पंचास्तिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं इन्द्रसदवंदियाणं इवणहितमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनानं जिदभवानं। ये पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, इसके आज गाथा नंबर 10 को हम आज पढ़ना शुरू करेंगे और हम पृष्ठ क्रमांक 62 पर आए हैं, 62 और 10वां श्लोक।
दौवं सल्लक्षणयम् उपादवयदुवत्त संयुक्तम् गुणपज्ञयासयम् वाजम् जंतम्भण्णन्ति सौवन्नो द्रव्यं सल्लक्षणकम् उपादवयदुवत्त संयुक्तम् गुणपर्यायाश्रयम् वा यत्तद्भण्णन्ति सर्वज्ञाः छे सत्वलक्षण देहनु उत्पादवय ध्रुवयुक्त जे गुणपर्याश्रय जेह तेने द्रव्य सर्वज्ञो करे।
संस्कृत पढ़ते अन्वयार्थ, संस्कृत नहीं गुजराती, जे सत लक्षण वाळू छे, जे उत्पाद वे द्रव्य संयुक्त छे, अथवा जे गुण पर्यायोनो आश्रय छे, तेने सर्वज्ञो द्रव्य कहे छे। वो द्रव्यम हुआ है, वो द्रव्य करना। देखो तीन बातें बताई है, क्या क्या द्रव्य किसको कौन कहते हैं, पहले तो बोलते हैं सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं द्रव्य किसको कहते हैं, तो उसके तीन बातें बताई है। एक सत लक्षण वाला जो होता है, दूसरा क्या है उत्पाद वय द्रव्य संयुक्तम जो होता है, और तीसरी बात क्या है जो गुण पर्याय उनको आश्रय देता है, इसको सर्वज्ञ भगवान द्रव्य कहते हैं। अभी संस्कृत के साथ अन्वयार देखते हैं। यत जे सल्लक्षणकम सत लक्षण वाड़ू छे उत्पाद वय ध्रुवत्व संयुक्तम, जे उत्पाद वे द्रव्य संयुक्त छे वा अथवा गुण पर्याय आश्रम जे गुण पर्यायनो आश्रय छे तत तेने सर्वज्ञाः सर्वज्ञो द्रव्यम द्रव्य भणन्ति कहे छे।
हाँ, तत्परिवृत्ति पढ़ेंगे एवं द्वितीय स्थले सत्ता द्रव्ययोः अभेदस्य द्रव्य शब्दस्य व्युत्पत्तिश्चेति कथन रूपेण गाथागता। अभी सत्ता और द्रव्य वो अभेद है, उसकी बात अभी गई। अथ त्रेधा द्रव्य लक्षणम उपदिशति। अब तीन प्रकार से द्रव्य का लक्षण बताते हैं। दव्यम सल्लक्षणम लक्षणयम् द्रव्यम सत्ता लक्षणम, वो हम पंचाध्याय में थे, द्रव्यम सल्लक्षणिकम, इसे सत्ता ही उसका लक्षण बताया। द्रव्यार्थिक नयन बौद्धम प्रति, क्योंकि बौद्ध लोग तो उनके जो मान्यता है वो क्षणिक ही मानते हैं, वो कायम टिकने वाली सत्ता ऐसे कुछ मानते ही नहीं है, तो उसके प्रति बता रहे। उत्पाद उपादव वय धुवत्त संयुक्तम, उत्पाद वय द्रव्य संयुक्तम, ये पर्यायतिक नहीं, नहीं पर्यायतिक नहीं से वो उत्पाद व्यय और ध्रुवता से संयुक्त है। और कैसे? गुण पज्जया संयम वा गुण आशय ने आश्रय वा गुण पर्याय आधारभूतम, यानी गुण और पर्याय का आधारभूत वा सांख्य नैयायिकम प्रति, यानी सांख्य के प्रति और नैयायिकों के प्रति, क्योंकि वो उत्पाद व्यय ध्रुवता नहीं मानते या वो उसके भेद नहीं मानते, इसलिए उनके प्रति बताए। जम तम भन उनके प्रति बताया है, उनके ने उनका निराकरण करने के लिए ये बताते हैं। वो एकांतवादी है, नित्यांश नहीं मानते बौद्ध, केवल क्षणिक ही मानते हैं। तो द्रव्य की सत्ता है, द्रव्यार्थिक नय वहाँ घटित हो रहा है और पर्यायार्थिक नय से वो उत्पाद व्यय ध्रुवता युक्त है, पर्याय बदलती है उसकी, तो पर्याय वाला है ऐसा हम वो पर्यायार्थिक नय से कहेंगे। तो दोनों नयों से पूरी वस्तु होती है, प्रमाण वस्तु होती है। तो जो एकांत मत से ऐसी ही सर्वथा वस्तु है मानते हैं, उनके प्रति ये बता रहे हैं। यानी ये कहने से, द्रव्य का ऐसा लक्षण कहने से जो एकांतवादी है उनके मतों का निराकरण हो जाता है। ऐसा नहीं तू छुपखटा हुआ, ऐसे नहीं, वो सत्य क्या है बताने से वो असत्य का प्रतिषेध हो जाता है। यदेवं लक्षणत्रय संयुक्तम तद द्रव्यम भणन्ति, यानी ऐसे तीन लक्षणों से संयुक्त ऐसा जो द्रव्य है ऐसा बताते हैं। कौन? सर्वज्ञ भगवान। तथा ही अभी उसी को बता रहे, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सत्ता लक्षणम इति उक्ते, यानी सत्ता उसका लक्षण ऐसा कहने पर, इति उक्ते सति यानी ऐसा कहने पर, उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम गुण पर्यायत्व लक्षणम च नियमेन लभ्यते। जब सत्ता ये लक्षण कहते हैं तो सत्ता कहने से वो उत्पाद व्यय ध्रुवता वाली है और गुण पर्याय वाली, वो तो उसमें ही आ जाती है, नियम से वो उसका लाभ हो जाता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम इति उक्ते सत्ता लक्षणम गुण पर्यायत्व लक्षणम च नियमे लभ्यते, यानी तीन लक्षण ऐसे है कि एक लक्षण कहने पर दूसरे दो अपने आप मिल जाते, यानी उसमें गर्भित हो जाते। उत्पाद व्यय ध्रुवता युक्त द्रव्य होता ऐसा कहने पर उसका सत्ता लक्षण भी ख्याल में आता है और गुण पर्याय वाला भी लक्षण ख्याल में आता है। अब गुण पर्यायवत इति उक्ते, यानी गुण पर्यायवत वो द्रव्य ऐसा कहने पर, इति उक्ते सत्य ने ऐसा बताने पर, उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणत्वम सत्ता लक्षणम च नियमेन लभ्यते। तीन में से एक कहने पर बाकी दोनों का ही लक्षण सहज उपलब्ध हो जाते हैं। एकस्मिन् लक्षणे अभिहिते सति अन्य लक्षणद्वयं कथम लभ्यते इति चेत्, ये कहते हैं एक ही लक्षण बताने पर अन्य दो लक्षण कैसे उपलब्ध होते हैं। त्रयाणां लक्षणानां परस्पर अविनाभावित्वात् इति, ये तीनों ही लक्षण परस्पर में अविनाभावी है। अविनाभावी का अर्थ समझते हैं, जहाँ एक है वहाँ दूसरा है ही है। तो ये सारे लक्षण एक है तो वहाँ दूसरे, हाँ, अविनाभाव से प्राप्त हो जाते। अथ मिथ्यात्व रागादि रहितत्वेन शुद्ध सत्ता लक्षणम अगुरु लघुत्व षड हानि वृद्धि रूपेण शुद्ध उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम अकृतज्ञादि अनंत गुण लक्षणम सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षणम च शुद्ध जीवास्तिकाय संज्ञम शुद्ध जीव द्रव्य उपादेय मिति भावार्थ है। भावार्थ क्या निकाला कि शुद्ध जीव द्रव्य उपादेय है, इसलिए वो शुद्ध जीव द्रव्य कैसा लिया कि मिथ्यात्व रागादि रहित ऐसा शुद्ध सत्ता उसकी लक्षण है। जैसे सत्ता लक्षण कहा है यहाँ ऊपर, द्रव्य का लक्षण क्या है तो सत्ता, तो यह शुद्ध सत्ता। शुद्ध की सत्ता किसको कहा? वो मिथ्यात्व रागादि रहित वो शुद्ध सत्ता। अब कहते उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षण बताए तो शुद्ध किसको कहना? तो षड्गुण हानि वृद्धि जो अगुरु लघुत्व गुण की है वो तो अनादि से वो तो शुद्ध ही होती है, तो उसको यहाँ उत्पाद व्यय ध्रुव में लेना। यहाँ लिखा ना अकृतज्ञ अकृतज्ञादि अनंत गुण लक्षण, कृत ज्ञानादि चाहिए कि पता नहीं है ना रह गया क्या, सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षणम च, यानी ज्ञानादि अनंत गुण लक्षण और सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षणम। ऐसा जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, ऐसा शुद्ध जीव द्रव्य ही उपादेय है, ऐसा इसमें से भावार्थ निकाला हूँ। गुण पर्याय देखो, सभी शुद्ध जीव को लेना है तो ज्ञानादि अनंत गुण वो तो शुद्ध है, और सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षण उसका लक्षण, गुण पर्याय लक्षण बताया है। यहाँ शुद्ध जीव लेगा नहीं, सब सब शुद्ध 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 ले लिया। अब कहते हैं क्षणिक एकांत रूपम बौद्धम मतम, नित्य एकांत रूपम सांख्य मतम, उभय एकांत रूपम नैयायिक मतम, मीमांसक मतम च सर्वत्र मतांतर व्याख्यान काले ज्ञातव्यम। अभी ऊपर जो बताया ना, एक एक लक्षण के द्वारा अन्य मतियों का निराकरण हुआ। तो ये बौद्ध मत कैसा है? क्षणिक एकांत रूप, एकांत कहने से सर्वथा क्षणिक मानने वाले, नित्य अंश को स्वीकार नहीं करते। और वो कोई सत, देखो हमने क्या माना था, द्रव्य है, द्रव्य सत्ता है, सामान्य स्वरूप से सत्ता है, और उसके अनादि अनंत पर्याय भी सुनिश्चित है, उसमें पड़ी है और उसमें से पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो सर्वथा असत का नहीं उत्पन्न होता। परंतु बौद्ध मत में क्या मानते हैं, पूरा द्रव्य ही क्षणिक है ही नहीं कुछ, और नहीं में से क्या उत्पन्न हुआ, असत की उत्पत्ति मानते हैं वो, और वो भी क्षणिक मानते हैं। द्रव्य कायम रहते हुए उसके पर्याय पलटती है, परंतु वो ऐसा नहीं मानते, इसलिए कहते हैं क्षणिक एकांत रूप बौद्ध मत, नित्य एकांत रूप सांख्य मत। इसलिए वो उत्पाद व्यय और ध्रुवता ये बताया, उससे वो सांख्य मत का भी निराकरण हो जाता है। और उभय एकांत रूप नैयायिक मत और मीमांसिक मत, ये अलग अलग जो नाम है इसके, जो डिटेल्स है वो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखे थे, उनकी क्या मान्यताएं हैं। सर्वत्र मतांतर व्याख्यान काले ज्ञातव्यम, मतांतर ने अन्य मतियों के जो व्याख्यान बताए ऊपर, वहां उनकी अपेक्षा से बात की थी। अब पूछते हैं क्षणिक एकांत किम दूषणम, क्षणिक एकांत मानने में क्या दोष है? ये न घटादि क्रिया प्रारब्धा स तस्मिन् एव क्षणे गतः क्रिया निष्पत्ति नास्ति इत्यादि, यानी जिसने वो घटादि क्रिया प्रारंभ की वो उसी क्षण में निकल गया, नष्ट हो गया, गता यानी नष्ट हुआ, तो क्रिया की कार्य की निष्पत्ति नहीं होगी, कोई भी कार्य नहीं ठहरेगा, क्योंकि जो करता है वो स्वयं ही नष्ट हो गया ना, कोई भी कार्य होगा ही नहीं। नित्य एकांते च यो असौ तिष्ठति स तिष्ठति एव, क्या कहते हैं, नित्य एकांत मानने वाला क्या पर्याय को ही नहीं मानता, तो जो खड़ा है वो खड़ा ही रहता है, सुखी सुखी एव दुखी दुखी एव दुखी दुखी रहेगा। अब सब लगा लो, रोगी रोगी रहेगा, बूढ़ा बूढ़ा ही रहेगा, मरेगा निर्धन निर्धन ही रहेगा, तो नहीं चलेगा सब में लगा लो इत्यादि। टंकोत्कीर्ण नित्यत्वेन पर्यायांतरम न घटते, अने टंको सर्वथा नित्य माननारे वाले को वो अन्य अन्य पर्याय अवस्था पलटना ये घटित नहीं होता। परस्पर निरपेक्ष द्रव्य पर्याय उभय एकांते, क्या कहते हैं, उभय एकांत क्या आप कहेंगे, दोनों ही मान रहे हैं ना, उभय एकांत क्या हुआ उसमें, तो इधर सर्वथा उभय एकांत ने परस्पर निरपेक्ष मान रहे हैं। हम कैसे कि द्रव्य कायम रहते हुए नित्य पलटता, यानी दोनों परस्पर सापेक्ष है, और ये उभय एकांत वाले बिल्कुल निरपेक्ष मानते हैं। तो कहते परस्पर निरपेक्ष द्रव्य पर्यायो उभयई एकांते पुनः पूर्वोक्त दूषण द्वयमपि प्राप्नोति, दोनों ही दूषण प्राप्त होते उसमें। निरपेक्ष मानता देने को तो एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, हम भी कायम रहने वाले उत्पाद व्यय और ध्रुवता वो कायम, हाँ तो कहते कायम ही रहता है, उसमें उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं है, और कहते उत्पाद व्यय होते रहते हैं उसको ध्रुवता की अपेक्षा नहीं है।
देखो हम लोग क्या मानते हैं, द्रव्य की अपेक्षा कायम टिकता है और पर्याय की अपेक्षा कायम बदलता है, तो अपेक्षा लगाई ना, तो वो निरपेक्ष, कोई अपेक्षा ही नहीं, बस बदलना और
तो
कायम रहना।
किसकी कहलाएगी? द्रव्य की पर्याय कहते हैं, तो बिना द्रव्य की पर्याय के कहाँ? द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते, वो तो दूसरी द्रव्य की मानो ही नहीं। सोना और उसके बंगड़ी दो बिल्कुल भिन्न है, बंगड़ी जुदी है, सोना जुदा है। ये सोने की बंगड़ी होगी और वही पलटकर वो बंगड़ी का, सोना जो बंगड़ी रूप था उसका हार बनाया हमने, तो कायम रही वही चीज, कायम रही और उसकी अवस्था पलटी, ऐसा ये नहीं मानते। जैन मते पुनः परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यायत्वात् नास्ति दूषणम्। जैन मत में क्या है कि जो परस्पर सापेक्ष जो है द्रव्य पर्याय होने से उसमें दूषण नहीं है, नास्ति दूषणम्, दूषण नहीं, दोष नहीं लगता। अब यहाँ अमृतचंद्राचार्य की टीका का अनुवाद पढ़ेंगे,
पेज नंबर 63 अनुवाद। आई त्रण प्रकारे द्रव्यनु लक्षण कहूं छे, तीन प्रकार कौन से है? तो कहते सद द्रव्य लक्षण वाला, वो एक सत सत लक्षण है वो, दूसरा उत्पाद वे ध्रुव और तीसरा गुण पर्याय को आधार है, ऐसा को द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि सत द्रव्यनु लक्षण छे, पूर्वोक्त लक्षण वाली सत्ता थी द्रव्य अभिन्न होवाने लीधे सत स्वरूप द्रव्यनु लक्षण छे। वड़ी अनेकांतात्मक द्रव्यनु सतमात्र स्वरूप नथी के जेथी लक्ष्य लक्षण ना विभाग नो अभाव थाय। सत्ता थी द्रव्य अभिन्न छे तेथी द्रव्यनु जे सत्ता स्वरूप, जे सत्ता रूप स्वरूप छे ते द्रव्यनु लक्षण छे। यानी यहाँ सत को ही लक्षण बताया है द्रव्य का। कहाँ पर? वहाँ यानी कहाँ? तत्वार्थ, हाँ बस वही है,
वही बात है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, सत द्रव्य लक्षण बताया तो सर्वथा यही लक्षण है क्या? तो अनेकांत है, तो अन्य भी उसके उसी में घटित हो रहे हैं, वो बता रहे हैं। अभी ये भी अनेकांतात्मक द्रव्य नु सतमात्र स्वरूप नथी, यानी केवल उसको सतमात्र इतना ही मत कहो, उसमें क्या क्या गर्भित है वो बता रहे हैं कि जेथी लक्ष्य लक्षण ना विभाग नो अभाव था, यानी उसका विभाग ही नहीं रहा लक्ष्य लक्षण का। नहीं नहीं वो बात नहीं है, अकेले सत इतना ही द्रव्य का लक्षण है क्या ये पूछ रहे हैं, तो उसको उत्पाद व्यय और गुण पर्याय का आश्रय ये भी लक्षण उसमें है ये कहना चाहते हैं। अकेला एक ही लक्षण मानेंगे तो एकांत हो जाएगा ये कह रहे हैं। यहाँ लिखा ना अनेकांतात्मक द्रव्य नु सतमात्र स्वरूप नथी, द्रव्य अनेकांतात्मक छे तो उसका लक्षण में भी ये अनेकपना, तीन लक्षण उसके बता रहे हैं ना यहाँ लिखा, तीन प्रकार से द्रव्य का लक्षण बता, उसके कथन में भी है, वो लक्षण नहीं है वो बात नहीं है, कथन में जो अलग अलग तरह से उसका लक्षण का कथन हो सकता है।
देखो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं फिर से, सत्ता थी द्रव्य अभिन्न छे तेथी द्रव्यनु जे सत्ता रूप स्वरूप छे तेज द्रव्यनु लक्षण छे। ये सत्ता जो है वो उसका लक्षण है, इस बात को बताया। अब कहते हैं प्रश्न, जो सत्ता ने द्रव्य अभिन्न छे छता द्रव्यनु स्वरूप स्वरूप छे, तो सत्ता लक्षण छे ने द्रव्य लक्षण छे वो विभाग कई रीते घटे छे? यानी यहाँ सत्ता जो है वो उसका लक्षण है और द्रव्य उसका लक्ष्य है, इस बात को एग्री नहीं हो रहे वो प्रश्नकर्ता, इसलिए कहते हैं कि फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। जो सत्ता ने द्रव्य अभिन्न छे ऐसा आप कह रहे हैं, पर अभिन्न कई अपेक्षा है, द्रव्य अनेक क्षेत्र अपेक्षा अभिन्न छे, क्योंकि लक्षण कहो या गुण कहो उसका द्रव्य क्षेत्र काले एक एक रूप छे अने भावे भिन्नता छे, वो सत्ता द्रव्यनु स्वरूप स्वरूप छे, सत्ता लक्षण छे अने द्रव्य लक्ष्य छे, एवो विभाग कई रीते घटे छे? उत्तर आपे छे हवे, अनेकांतात्मक द्रव्यना अनंत स्वरूपो छे, तेमाथी सत्ता पण तेनु एक स्वरूप छे। शक्ति थी अनंत स्वरूप वालू द्रव्य लक्ष्य छे अने तेनु सत्ता नामनु स्वरूप लक्षण छे एवो लक्ष्य लक्षण विभाग अवश्य घटे छे। आ रीते अबाधितपणे द्रव्य सत द्रव्यनु लक्षण छे। यानी जो उज्ज्वला ने बताया वही बात यहाँ पर बताई।
यानी द्रव्य अनेकांत स्वरूप है और सत्ता उसमें से वन ऑफ द अनंत स्वरूप है,
वन ऑफ द लक्षण।
उसको लक्षण और लक्ष्य का विभाग कर सकते हैं। विभाग कैसे हो सकता है उसका प्रश्न है। ऊपर बताया ना अनेकांतात्मक द्रव्य नु सतमात्र स्वरूप नहीं। सत इतना ही क्या उसका स्वरूप है कि नहीं? वो तो अनंत स्वरूप वाला द्रव्य है, सत्ता उसमें से एक है, इसलिए उसको लक्ष्य और लक्षण ऐसा भेद हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका विभाग ही संभव नहीं था। एक ही उसका स्वरूप, उसका एक ही लक्षण होता तो उसका विभाग नहीं कर सकते थे। इसके लिए ब्रैकेट में उन्होंने बता दिया इतना प्रश्नोत्तर करके।
अभी आगे अथवा उत्पाद वे द्रव्य द्रव्यनु लक्षण छे। ऊपर क्या बताया था कि सत द्रव्यनु लक्षण छे पहले लाइन में, पहले सेंटेंस की शुरुआत में। अब यहाँ कहते हैं अथवा, ये तो है अथवा, और उत्पाद वे द्रव्य द्रव्यनु लक्षण छे। एक जातिनो अविरोधक एवो जे क्रमभावी भावोनो प्रवाह तेमा पूर्व भावनो विनाश ते व्यय छे। उत्तर भावनो प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ने निर्माण होना, पश्चिना भावनी एटले के वर्तमान भावनी उत्पत्ति ते उत्पाद छे अने पूर्व उत्तर भावना व्यय उत्पाद थता पण स्वजातिनो अत्याग ते द्रव्य छे ते उत्पाद। अभी ये तो समझ में आवे ऐसी बात है, उत्पाद किसको कहा, व्यय किसको कहा और ध्रुवता ध्रुव किसको कहा। ये ध्रुवता की डेफिनेशन कुछ अलग से दी है। पूर्व उत्तर भावना व्यय उत्पाद थता पण स्वजातिनो अत्याग ते द्रव्य छे।
देखो देखो पहले क्या बताया, एक जाति नो अविरोधो के वो जो क्रमभावी भावनो प्रवाह, यानी द्रव्य जाति उसके कोई विरोध नहीं है। जो उत्पाद है व्यय है वो उसी जैसे पुद्गल में जो उत्पाद व्यय होगा वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होगा कि कभी ज्ञान वाला होगा, समझ में ना। वो तो जाति का अविरोध, या क्या लिखा, एक जाति नो अविरोध के वो जो भावो नो प्रवाह, क्रमभावी प्रवाह ने पर्यायों का प्रवाह। हाँ उसी जाति के, उसी जाति के उसमें उत्पाद व्यय होगे ना, चेतन होगा तो जानना देखना मानना जो कुछ है उसके जो अनेक गुण है उस रूप उसका उत्पाद व्यय होगा। अन्य जाति का नहीं होगा, अपने जाति का त्याग नहीं होगा उसका, उस जाति के अविरोधी वाले उसमें उत्पाद होगे। यहाँ क्या लिखा, एक जाति नो अविरोधक एवो क्रमभावी भावो नो प्रवाह। प्रवाह है ना, क्योंकि उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय तो पर्यायों का प्रवाह होता है और उसमें पूर्व भाव का विनाश व्यय उत्तर भाव का उत्पाद वो होता है। और स्व जाति नो अत्याग से द्रव्य, द्रव्य की जाति तो वैसी की वैसी रहेगी, वो उसका द्रव्य होता है। हाँ वो द्रव्यपना उसका जो उसका कायम कायमी स्वरूप जो है वो वैसा ही रहता है। वो क्या स्वरूप बदल कर जीव अच्छे जड़ नहीं हो जाता है। हाँ चौथी लाइन,
ते उत्पाद वे द्रव्य के जीवो सामान्य आदेशो अभिन्न छे। अर्थात सामान्य कथने द्रव्य ते अभिन्न छे, विशेष आदेशे द्रव्य ती भिन्न छे। यानी सामान्य जो है वो द्रव्य से अभिन्न पना बताया, विशेष यानी पर्याय जो द्रव्य ती भिन्न छे, युगपद वर्ते छे, एने स्वभावभूत छे ते वो द्रव्यनु लक्षण छे। यहाँ उत्पाद व्यय की बात पता कर ये तीनों ही एक एक में है, ये अपने स्वभावभूत है, ये वो द्रव्य का लक्षण बताया। अथवा गुण पर्यायो कथनचित भिन्न है ना। देखो बात ऐसी है, द्रव्य और पर्याय दो अलग अलग नाम है कि नहीं? तो संज्ञा की अपेक्षा से भिन्नता है। हाँ बस ऐसे ही लेना,
जैसे हमने लक्ष्य और लक्षण का भेद है ना उसकी बात कर, लक्ष्य लक्षण कथन के भेद है कि नहीं भेद उसकी बात है। तो सामान्य से कहेंगे सामान्य, कथन से द्रव्य से अभिनय कहेंगे, आदेश है कथन से, यानी कि ब्रैकेट में दे लिया था सामान्य कथने, कथने ने सामान्य से कथन करेंगे तो द्रव्य से अभिनय, क्योंकि उत्पाद व्यय ये द्रव्य का लक्षण बताया है, उत्पाद व्यय द्रव्य वो तो इसलिए द्रव्य से, लक्ष्य लक्षण उसका अभिन्न होता है, और विशेष से कहेंगे तो लक्षण जुदा है, जैसे हम विशेषण उसकी संज्ञा जुदी है, इस तरह से उसके जुदा है। युगपद वर्ते छे अने स्वभावभूत छे एटले द्रव्यनु लक्षण, दोनों एट ए टाइम है इसलिए उसको द्रव्य का लक्षण बताया।
अभी तीसरा पॉइंट, अथवा, ये अथवा अथवा बता रहे हैं और नहीं, यानी ऐसा लो या ऐसा लो या ऐसा लो, तीनों का अर्थ द्रव्य के लक्षण में द्रव्य की बात आएगी। गुण पर्याय द्रव्य नु लक्षण छे, यहाँ गुण पर्यायों को द्रव्य का लक्षण बताया। अनेकांतात्मक वस्तु न अन्वयी विशेषो ते गुणों छे, अने व्यतिरेकी विशेषो ते पर्याय छे। गुणों अन्वय का अर्थ वही कवई वही कवई वही कवई, उसको वो विशेष जो है वो गुण, यानी गुण कभी बदलते नहीं, गुण ज्ञान 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 ऐसा अन्वयी है।
विशेष इसलिए कहा कि द्रव्य एक है और उसके गुण अनेक है ना, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, ये विशेष हुए। द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो गुणों को विशेष कहेंगे, पर्याय को भी वो अपेक्षा अलग है, पर्याय को भी विशेष कहेंगे, पर्याय एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते ये कह रहे। अन्वयी क्यों कहा, गुण कैसा, ज्ञान 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 वही का वही है, उसको अन्वय कहेंगे, और पर्याय हर समय नई नई होती है, यह वह नहीं है ऐसा जहाँ कह सकते वो व्यतिरेक कहें।
व्यतिरेक विशेष होते पर्याय छे, यानी विशेषों में भी दो भेद किए, एक अन्वयी विशेष और एक व्यतिरेक विशेष। अन्वयी विशेषों को गुण कहा और व्यतिरेक विषयों को पर्याय कहा। ते गुण पर्यायो, गुणों अने पर्यायो के जेवो द्रव्यमा एक ही साथे अने क्रमे परवर्ते छे, द्रव्यती कथनचित भिन्न तथा स्वभावभूत छे, ते वो द्रव्यनु लक्षण छे। द्रव्यना त्रणे लक्षणों माथी सत उत्पाद वे द्रव्य अने गुण पर्यायो ए त्रणे त्रण लक्षणों माथी एक केता, बाकीना बनने वगर कहे अर्थ थी आवी जाए छे। जो द्रव्य सत हो तो ते उत्पाद व्यय ध्रुव वालू अने गुण पर्याय वालू होय छे। ये जैसे हमने देखा ना, एक है तो बाकी दो होंगे होंगे, इसमें से पहले को एक को निकाला सत को, फिर उसके साथ में उत्पाद व्यय ध्रुव वालू अने गुण पर्याय वालू होय छे। जो उत्पाद वे द्रव वालू हो तो सत अने गुण पर्याय वालू हो, जो गुण पर्याय वालू हो तो ते सत अने उत्पाद वे ध्रुव वालू हो। आ प्रमाणे सत नित्य नित्या नित्यात्मक स्वभाव वालू छे, नित्य ने कायम रहने वाला और अनित्य ने बदलने वाला, यानी उसको उत्पाद वे और ध्रुवता के साथ वाला कह रहे। सत केव नित्य स्वभाव वालु होवा थी द्रव्य ने अने उत्पाद व्यात्मकता ने जाहिर करे छे। दूसरा पॉइंट, द्रव्यात्मक गुणों अने उत्पाद व्यात्मक पर्याय साथ एकत्व दर्शावे छे ते उत्पाद वे द्रव्य छे।
नहीं देखो, एक लक्षण कहने पर दूसरे दो कैसे उसमें गर्भित होते हैं ये बात बता रहे हैं। पहला क्या बताया, सत, सत लक्षण कहा, वो सत कैसा है, नित्यानित्य स्वभाव वाला है, इसलिए वो क्या जाहिर करता है, द्रव्य को और उत्पाद व्यत्म, क्योंकि द्रव्य और अनित्य ने उत्पाद व्यय ये बताते, यानी उसमें उत्पाद व्यय वाला वो लक्षण भी आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, द्रव्यात्मक क्या है तो गुण है और उत्पाद व्यात्मक क्या है तो पर्याय है, उसके साथ भी वो एकत्व बताता है। यानी वो सत लक्षण कहने पर अन्य दो लक्षण कैसे आ गए, उसका यहाँ हो गया फुल स्टॉप। अभी दूसरा लक्षण उत्पाद वे द्रव्य वाला लक्षण वो क्या बताता है वो अभी बताएंगे।
नित्य नित्य अनित्य स्वरूप पारमार्थिक सत ने जणावे छे तथा पोताना स्वरूप नी प्राप्ति ना कारणभूत गुण पर्याय ने जाहिर करे छे। गुण पर्याय अन्वय अने व्यतिरिक होवा थी गुण अन्वय और पर्याय व्यतिरिक।
ये तीसरा तीसरे लक्षण में अविनाभावी बता रहे, बरोबर है। हाँ
तीसरा पॉइंट जो चालू होता है ना वो नीचे से थर्ड लाइन लास्ट वर्ड गुण पर्याय अन्वय ने व्यतिरेक हुआ थी।
हाँ, गुण पर्याय वहाँ से शुरू होता है।
यानी गुण जो होते हैं अन्वय होते वही के वही वही के वही और पर्याय ने जो वही नहीं थी बदल के दूसरे आई है वो हुआ थी। द्रव्य ने अने उत्पाद वे द्रव्य ने सूचवे छे उत्पाद वे ने सूचवे छे तथा नित्या नित्या नित्य अनित्य स्वभाव वाला पारमार्थिक सत ने जनावे छे। वही बात बताते एक हो तो दूसरा दो होते है, तीन में से कोई भी एक कर लो तो बाकी दो होते है, ये बात बताई है। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन देखेंगे, पेज नंबर है 64। सत्ता जेनु लक्षण छे तेने सर्वज्ञ वितराग देव द्रव्य कहे छे अथवा उत्पाद वे द्रव्य द्रव्य नु लक्षण छे अथवा गुण पर्याय नो आधार छे ते द्रव्य नु लक्षण छे। ये द्रव्य के लक्षण कौन कौन से बताए वीरेश भाई आप बताएंगे? सत उत्पाद वे ध्रुवत्व और गुण पर्याय का आधार।
हमने सूत्र भी देखे ना तीन, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत और गुण पर्यायवत द्रव्यम, इसमें सब आ गए। एक कहो तो उसमें दो बाकी दो गर्भित होते ही, कोई भी एक कहो तो उसमें सब आ जाते।
अभी थर्ड लाइन नया पैराग्राफ। दरेक वस्तु में सत्ता लक्षण छे, सत्ता लक्षण छे अने द्रव्य लक्ष्य छे। कोई पण द्रव्य परना लक्षणे जणातो नथी। आत्मा अने परमाणु वगैरे छ द्रव्यो छे जेनु लक्षण सत्ता छे ते कोई परने लईने नथी। 25 मणनुं लाकडुं एक माणसथी ऊंचुं न थाय पण 15-20 माणसथी ऊंचुं थतुं देखाय छे ते वात खोटी छे। ऐसा लगता है कि सबका साथ में वजन उठाने का प्रयत्न हुआ तो उड़ गए। अरे जो हाथ है और जो लकड़ा है उसमें अनन्य अभाव है, तो अभाव है तो कैसा उठाएगा? तो ऐसा तो अपन बिल्कुल नहीं मानते। क्या कहा, ये कल भी बात आई थी, यही बात आई थी। देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूं मैं, नया पैराग्राफ है ना। दरेक वस्तु में सत्ता लक्षण छे, इसमें दो सेकंड लाइन। आत्मा अने परमाणु वगैरह छ द्रव्यो छे जेनु लक्षण सत्ता छे। अने हरेक का अपना अपना लक्षण अलग अलग है, ते कोई परने लईने नथी। अभी इसके लिए उदाहरण दे रहे, 25 मन नु लाकड़ू एक मानस थी ऊंचू न थाय पण 15-20 मानस थी ऊंचू थतुं देखाय छे ते वात खोटी छे। एक मानस थी ऊंचू थतु नथी तो 20 मानस थी पण थतु नथी, केम के 20 मानस एक थया नथी। दरेकनी सत्ता जुदी छे ने, बधानी सत्ता जुदी जुदी छे। सत्ता भेगी थई गई नथी, जो भेगी थई जाए तो 20 20 पने रहे नहीं। लाकड़ू 20 मानसे ऊंचू कर्युज नथी। अज्ञानी यानी अपने हमको बता रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो, संयोग थी जुए छे लाकड़ू एना कारणे ऊंचू थाय छे। त्यारे संयोगी दृष्टि वालो 20 मानसे भेगा थईने लाकड़ू ऊंचू कर्यु एम अज्ञान थी माने छे। अभी क्लियर हो गया ना, कितना सरल सिंपल दिया है। एक परमाणु आत्माना विकारमां निमित्त थतो नथी तो अनंता परमाणु भेगा थई कर्म थईने आत्मा ने विकार करावे एम बनतु नथी। पहले शुरुआत किससे करते हैं कि एक परमाणु आत्माना विकारमां निमित्त थतो नथी अने अनंत परमाणु भेगा थईने पण विकार करावे एम नथी। अनंत परमाणु भेगा थया ज नथी। एक परमाणु कारण न थाय तो अनंत परमाणु पण कारण थता नथी। जीव पोते विकार करे तो कर्म में उपचार करवामां आवे पण अनादिथी अज्ञानी ने भ्रम थयो छे के कर्मना कारणे आत्मा में विकार थाय छे पण ते मूढ़ता छे।
केवल द्रव्य के लक्षण के ऊपर यहाँ तक बता रहे हैं। द्रव्य समझने में भूल की तो कितनी भूल हो रही है। एक उसके एक द्रव्य की सत्ता जुड़ी है पदार्थ की, इतना मान लो तो कोई भ्रम नहीं रहेगा। तो वही माना ना हमने, केवल द्रव्य के नाम याद कर लिए, बाकी कुछ ये तो भूल गए। उसमें कितना न्याय से निकाल रहे कि
देखो हमारी पहचान के व्यक्ति थी, बाई थी, उसको पति से कभी सुख नहीं मिला। लड़के बड़े हो गए और लड़कों ने शादी की तो उसकी वो आ गई, तो अपन अगर समझो उसको मिलने को घर में जावे तो चाय बनाने के होगे तो चाय की बरनी क्या तुम्हारा शक्कर की बरनी और लॉक में रखे, दूध फ्रीज में होगा तो फ्रीज को लॉक और चाबी वो बहू के पास। तो ऐसा वो कहती थी कि क्या करे दिनेश, हमने ऐसे खोटे कर्म बांधे हैं इसलिए हमको ये परिणाम भोगना पड़ता है। तो यहाँ तो क्या कह रहे, खोटे कर्म बांधे हैं, तो यहाँ कह रहे कि कर्म कुछ नहीं करता है। एक परमाणु नहीं कर सकता है तो क्या 100 परमाणु करेंगे, क्या अनंत परमाणु भी नहीं करेंगे, ये बताते हैं। और हम तो इतने संयोग के दृष्टि से आधीन हो गए हैं कि वही बात सत्य है ऐसा हमको बार बार लगता है। क्या लिखा देखो, अनादिति अज्ञान ने भ्रम थयो छे कि कर्म ना कारणे आत्मा में विकार थाय पण ए मूढ़ता छे। सत्ता छे ते एना द्रव्य ने जणावे छे, बीजाना द्रव्य ने जणावती नथी। पोतानु ज्ञान राग अने निमित्तथी पृथक छे एम सत्ता जणावे छे। क्या कहते हैं, पोतानु ज्ञान राग अने निमित्तथी पृथक छे। एम सत्ता जणावे छे।
सत्ता अपने अपने द्रव्य को बताती है ना। क्या क्या नहीं है, क्या है, कहाँ से पढ़ हाँ उसके बाद में, अभी उसमें कौन सी लाइन, कौन सी उसमें पलटन पर कहाँ आ गई,
तुम्हारे में नहीं हमारे में है, आपके इसमें है क्या।
देखो यहाँ तो शायद एक्स्ट्रा कुछ होगा उसमें। ओहो हो
65 नहीं 64
में, चार पैराग्राफ है हमारे में उसके पहले।
अभी अभी बाजू में देखो, सत्ता छे તે એના દ્રવ્યને જણાવે છે, બીજાના દ્રવ્યને જણાવતી નથી. પોતાનું જ્ઞાન રાગ અને નિમિત્તથી પૃથક છે એમ સત્તા જણાવે છે. સત્તા શુદ્ધ દ્રવ્યને જણાવે છે, એ મૂળ વાત દેખો. ક્યુકિ રાગ તો અપને મેં ઉત્પન્ન હોતા હૈ લેકિન વો નહીં, શુદ્ધ જો દ્રવ્ય હૈ ઉસકો બતાને.
સત્તા હમને દેખી ને, તો સામાન્ય સત્તા ઓર ફિર વિશેષ સત્તા, ઉસમે ગુણ ઓર પર્યાય આયેગી, ઉસકે અપના પરિણમન, ઉસકા સહજ પરિણમન વાલા વો લેના, વો રાગ વાલા પરિણમન ઉસમે નહીં લેના. ઇસલિયે વો અપના જ્ઞાન હૈ, નિમિત્ત તો દૂસરા દ્રવ્ય હૈ, ઉસકી સત્તા ભી જુદી હૈ. એ રાગ વાલી પર્યાય ઉસકી ભી સત્તા જુદી લી ઉસમે. યહાં લિખો ને, સત્તા શુદ્ધ દ્રવ્ય ને જણાવે છે.
દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થતા સંયોગ દ્રષ્ટિ રહેતી જ નથી, સ્વભાવ દ્રષ્ટિ થતા અનંતાનુબંધી નો રાગ પણ રહેતો નથી. અને ક્યાં હોતા હોગા? હા મનીષાબેન, દેખો દેખો ક્યાં કહે રહે, ફિર સે પડતા હું મેં. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થતા સંયોગ દ્રષ્ટિ રહેતી જ નથી, એક વાત. સ્વભાવ દ્રષ્ટિ થતા અનંતાનુબંધી નો રાગ પણ રહેતો નથી, એને ક્યાં હોતા હૈ? સમ્યક તો હોતા હૈ, સમજ મે. લાકડી આંગળીથી ઊંચી થઈ નથી, કેમ કે લાકડી તે ખરેખર દ્રવ્ય નથી, ઉપચારથી તે દ્રવ્ય છે. એ ક્યાં એવો હંમેશા ક્યાં કરતે થે, એસકે એક લકડી રખતે થે એસે, ઓર ઉસે એસા એસા હાથ ભી નહીં લગા દેતે શાસ્ત્ર કો,
વો હાથ કા પસીના નહીં લગે ઓર યે પન્ના ભી પેચ ઉલટાને કે લિયે ઉન્હે હંમેશા એસે એક લકડી હોતી થી. તો લોક સમજતે થે જાદુ કે કોઈ એ તો ચુરા કે લે જાતે થે.
તો યહાં ક્યાં કહે રહે, લાકડી આંગળીથી ઊંચી થતી નથી, એ આંગળી સે એસે ઊંચી થતી નથી, કેમ કે લાકડી તે ખરેખર દ્રવ્ય નથી, ઉપચારથી તે દ્રવ્ય છે. ક્યુકે સ્કંદ હૈ ને, યે ઇસકે લિયે ઉસકો ઉપચારથી દ્રવ્ય કહેને મેં આ રહા હૈ. જ્ઞાની ને
દ્રવ્ય પરમાણુ દ્રવ્ય હૈ, સ્કંદ ઉપચાર સે દ્રવ્ય કહાં, યહી તો કહી રહ્યા અભી. અભી ક્યા પડના, દેખો દેખો,
યે સમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય હૈ, પર્યાય હૈ, ઇસકે ઉસકો દ્રવ્ય નહીં કહેંગે.
ના આંગળી દ્રવ્ય, ના લાકડી દ્રવ્ય, ઉસકે પરમાણુ જુદે જુદે હૈ સારે. હા, યે દ્રવ્ય પર્યાય કહેંગે, અનેક દ્રવ્યો કી મિલી જુલી સમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય.
જ્ઞાની ને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ હોવાથી પરનાકાર ને પોતાની પર્યાય થાય તેમ એમ તે માનતો નથી. તેને પોતાના હોવાપણામાં પરનું હોવાપણું ભાસતું નથી. કિસકો? જ્ઞાની કો. આ વાતમાં અજ્ઞાની ને ધર્મ દેખાતો નથી, અને એ સત્ય વાત સમજના ઓર માનના ઇસમે ધર્મ હૈ, પણ અજ્ઞાની ને એમ લાગતું જ નથી, સમજતો નથી.
દેખો યહાં ક્યાં કહા, પોતાના હોવાપણામાં પરનું હોવાપણું ભાસતું નથી, એને અપના અનુભવ હોતા હૈ ને અપને અસ્તિત્વ કા ભાન હુઆ ઉસકો, તો ઉસમે શરીર કા અસ્તિત્વ સમજ મેં આયેગા ઉસકો, ક્યા જાને રાગ અરે કુછ નહીં દેખેગા, ઉસમે કુછ નહીં દિખાઈ દેગા, વો હૈ અપને જગહ હૈ, પરંતુ અપને અસ્તિત્વ મેં ઉસકી અસ્થિ નહીં હૈ, ઉસકી અસ્થિ અપને જુદી હૈ. યહાં લિખા ના, તેને મેં જ્ઞાની ને પોતાના હોવાપણામાં પરનું હોવાપણું ભાસતું નથી. વહા ના રાગ કા વહા કુછ વેદન હો રહા હૈ ના કુછ, આત્મા કે અનુભવ કી કાલ કી બાત ચલ રહી હૈ. હા, જ્ઞાન જ્ઞાન તો સબકા કરેગા, જો પર કા ભી જ્ઞાન હોગા, રાગ કા ભી હોગા, જો યથાસ્થિત જાનેગા, પરંતુ આત્મા કે અનુભવ કે કાલ મે ઉસકો પરનું હુઆ પણ હું ભાસતું નથી. હા, વર્ણાદિ ઓર રાગ આદિ એ સબ આ ગઈ ઉસકે અંદર.
આ વાતમાં અજ્ઞાનીને ધર્મ દેખાતો નથી. તે કહે છે, તે એટલે અજ્ઞાની, કે દયા દાન ભક્તિ પૂજા વ્રતાદિની તો કંઈ વાત આવી નહીં, આ તે કેવો પ્રકારનો ધર્મ? તો તેને કહે છે કે પોતાની પોતામાં અસ્તિ અને પરની પોતામાં નાસ્તિ છે, સત્તા લક્ષણમાં બધું આવી જાય છે. સમજમાં તો યાને એ કિસી વિશેષ વ્યક્તિ કે લીએ નહીં બોલ રહે, એસી માન્યતા હી દુનિયા મેં ચલ રહી હૈ કે યે જો સબ દયા દાન વ્રત પૂજા ભક્તિ કરને સે ધર્મ હોગા, લેકિન વો તો શુભ ભાવ હૈ ના, શુભ ભાવ સે તો શુભ બંધ હોગા.
ઓર લોગોં કો તો ભાવ કી ભી પતા નહીં, વો ક્રિયા કો હી ધર્મ માન રહે. વો ભાવ ભલે દેખા દેખી હો, દૂસરોં કો દિખાને કા હો, બડપ્પન દિખાને કા હૈ, વો તો ભાવ તો ચલ રહે હો પાપ કે, ઓર કેવલ કોરી ક્રિયા કી તો કહેતે ધર્મ હુઆ.
देखो आगे क्या बताते हैं, पोतानी पोतामा अस्ति अने परनी पोतामा नास्ति, यानी जब मैं मेरी सत्ता मेरे में है, दूसरे किसी की सत्ता मेरे में नहीं, मेरी सत्ता पर में नहीं है, ऐसा जब मैंने निश्चित किया तो मैं घर को संभालता हूँ, मैं घर को निभाता हूँ. ये बात कहाँ से आई? क्योंकि घर की सत्ता घर में, घर के लोग की सत्ता उन लोक में, तो मैं पर की सत्ता को कैसा निभाता हूँ? यानी ये मैं पर को संभालता हूँ, पर को ध्यान रखता हूँ, ये मान्यता ही मिथ्या है. इसमें धर्म है जो सही मानेगा. देखो क्या कहते हैं कि पोतानी, फिर से कहते केवा प्रकार नो धर्म छे, तो तेने कहे छे, कोने मिथ्यात्वी ने कहे छे के पोतानी पोतामा अस्ति, ये हमने कभी माना ही नहीं है. हमारी अस्ति तो अपने में और पर की अस्ति भी मेरे में ही है, ऐसा माना. क्योंकि ये मेरा पैसा, ये मेरा धन, ये मेरा घर, ये मेरा बाल बच्चे, ये सब उसमें हमने अपनापन माना, तो वो अपना माना, उनकी सत्ता उड़ गई और मेरी सत्ता में मैंने दाखिल किया, तो वो धर्म नहीं होगा, वो मिथ्या मान्यता हो गई. इसलिए कहते हैं पोतानी पोतामा अस्ति अने परनी पोतामा नास्ति छे, सत्ता लक्षण में बधु आवी जाय छे. और ये हमने आज तक कभी माना ही नहीं है, इसलिए अभी तक हमको धर्म कभी हुआ ही नहीं है. लोगों को कहने में आता है कि छह द्रव्यों को बराबर समझ ले लो. अरे हमको तो छह द्रव्य का नाम याद है, सात तत्वों को यथार्थ प्रतीति वो भी तो याद है हमको. सात तत्व क्या है अभी बोल के बताता हूँ. बोलना बात अलग है, लेकिन उसका भाव भाषण होना बात अलग है. नहीं
देखो, महासत्ता अगर लेंगे, सद द्रव्य लक्षणम जो कहा, एक द्रव्य की जब बात कर रहे हैं, तो उसका महासत्ता वो उसको भी कह सकते किस अपेक्षा से उत्पाद वे ध्रुवता तीनों मिलकर उसको महासत्ता कहा. और उसके उसमें सारे आगे ना पांच विशेषण बताए थे, वो सब उसमें लागू हो जाएंगे.
लेकिन यहाँ जो पोतानी सत्ता पोतामा चाहिए वो तो इंडिविजुअल की बात है.
देखो बधु आवी जाए छे, अने अभी
सत्ता लक्षण यानी देखो ये सत्ता लक्षण यानी सत्ता देखिए किसका लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है. द्रव्य को हम सही समझते हैं तो उसमें सब आ गया, ऐसा बताते हैं.
देखो देखो अभी ऐसा पूरी महासत्ता ले लो. पूरी महासत्ता में अनंत द्रव्य है ना, तो मैं भी हूँ और पर भी है, और हरेक की अवंत सत्ता जुदी जुदी है. यानी वो एक की सत्ता दूसरे में कुछ नहीं करती है. यानी हरेक की सत्ता मान्य की हमने, यानी वो भी मान्य कर दिया. वो मान्य करने से मैं किसी का कार्य कर सकता हूँ, ये बात ही नहीं रही. एक बात, अब दूसरी द्रव्य को महासत्ता कहेंगे तो उसमें उत्पाद व्यय ध्रुवता सब आ गए, समझे. और उसमें फिर उत्पाद व्यय और ध्रुव अपना नहीं, वो तो अलग है. और भी पांच पांच लक्षण बताए थे, उसमें सारे गुण आ गए, सारे पर्याय, तीन काल के पर्याय, ये सब जो पांच विशेषण थे वो सब घटित हो जाएंगे. सत्ता कहने से पूरा का पूरा निर्णय होना चाहिए, और सत्ता में पूरा द्रव्य का स्वरूप उसमें घटित होना चाहिए. जब सत द्रव्य लक्षण में इतना ही कहते तो उसमें ये सब बातें अगर हमारे ज्ञान में आ जाए तो हमने द्रव्य को द्रव्य तरीके से जाना. ये तो मैं जीव द्रव्य हूँ, जान मेरा काय हूँ, तो हमने बहुत रट लिया है ना, गाना गाए. तो उसमें इतनी भाव भासना हो जाए तो हमने अभी द्रव्य का स्वरूप, यानी उसकी परिभाषा अभी नहीं, अभी हमारी पूरी नहीं हुई है. द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य किसको कहना ये भी नहीं हुआ है. पर अगर उसको नहीं समझे तो आगे की बात ही कहाँ रहेगी. कितना विस्तार से सत्ता के बारे में कितनी बातें बता रहे हैं। सत्ता कहने से महासत्ता अवान्तर सत्ता सबकी सत्ता अपनी अपनी जिस अपेक्षा से जहां जो घटित होता है वो सब है। यानी अकेले अवान्तर सत्ता ले लो महा ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि महासत्ता में तो सारे द्रव्य है, यानी उनकी भी सत्ता हमको स्वीकार है, परंतु वो मैं उस रूप नहीं हूँ। हर एक की अपनी अपनी जुदी जुदी है, वो भी उसमें घटित हो जाता है। यहाँ लखा ना सत्ता लक्षण में बधु आवी जाए छे, यानी पोतानी पोतामा अस्यानी परनी पोतामा नास्ति, कैसे आया महासत्ता में मेरी अवान्त सत्ता मेरे में हर एक की अपने में है, तो मेरे में सब अन्य जीवों की नास्ति है, मेरे में मेरी अस्थि है। जब सत्ता कहते वो यही असत्ता घटित हो जाती है, वो पहला ही वाक्य आया था उन्हें, वो बात सब इसमें लगा ले। हाँ वो सब आ गई बात, यही रुकना पड़ेगा।
देखो एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ जो सत्ता लक्षण में बधु आवी जाए छे वो इंडिविजुअल सत्ता की बात है, यानी आपने महासत्ता की बात उठाई, वो महासत्ता की बात यहाँ रेफरेंस है ही नहीं। सुनना, यही पैराग्राफ का पहली लाइन है, सत्ता छे ते एना द्रव्य ने जनावे छे। एक द्रव्य की बात हो गई ना, और यहाँ क्या होता है कि पोताना पोतानी पोतामा अस्ति छे अने परनी पोतामा नास्ति छे, त्यां तो अवान्तर सत्ता की बात चल रही है, वहां सत्ता की बात नहीं चल रही है। इसलिए कह रहे हैं सत्ता लक्षण में बधु आवी जाय छे, यानी तुम्हारी सत्ता तुम्हारे में है, मेरी सत्ता मेरे में है, तो मैं तुम्हारा कार्य करूँ या तुम मेरा कार्य करो ये नहीं हो सकता है। यानी यहाँ जो रेफरेंस है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, अवान्तर सत्ता को ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि ऊपर भी लिखा ना, सत्ता छे ते एना द्रव्य ने जनावे छे, बीजा द्रव्य ने जनावती नथी, पहली लाइन में है ना ऐसा। चलो अब यहीं रुकते हैं। जावनी के ज्ञान ते सुधे लो कालो सोवाणी मतन मोह सदा देत हो।